नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के बार बार नाम बदलने की कार्रवाई की निंदा की। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए। जुडिथ सुमिनवा तुलका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिप्पणियों और अन्य गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। ये पर्यवेक्षक विशेष तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में धन बल के प्रयोग द्वारा चुनाव लड़ने को रोकने के लिए विशेष वित्त पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों को नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गांव हो शहर हो सुविधा बढ़ेगी और इसका बहुत बड़ा लाभ ये देवभूमि मेरे उत्तराखंड को भी होगा।
नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रुद्रपुर में उत्तराखंड की अपनी पहली चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए एनडीए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।
देवभूमि उत्तराखंड के प्रति भाजपा का जो प्रेम है, जो अपनत्व है, वो जग जाहिर है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बीते 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ है।
उन्होंने सीएए के माध्यम से भारत की नागरिकता देने के फैसले के विरोध पर कांग्रेस की आलोचना की। कांग्रेस पर राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए श्री मोदी ने कहा कि यदि भाजपा फिर सत्ता में आई तो भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयास और तेज किए जाएंगे। भाजपा उम्मीदवार और राज्य मंत्री अजय भट्ट इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को उतारा है। राज्य में लोकसभा की सभी 5 सीटों के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। राज्य में कुल 83,37,914 मतदाता हैं। 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रधानमंत्री आज राजस्थान में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में कोटपूतली में एक चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होंगे। विभिन्न पार्टियों के नेता भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ओडिशा में लोकसभा की 21 और विधानसभा की 147 सीटों के चुनाव के लिए 13 मई से 4 चरणों में मतदान होगा। हमारी चुनावी श्रृंखला में विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज हम ओडिशा की संबलपुर लोकसभा सीट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा की 7 सीटें हैं जहां कुल 14,78,369 मतदाता हैं। संबलपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ओडिशा के संबलपुर संसदीय क्षेत्र में बीजू जनता दल ने अपने संगठन सचिव और जाजपुर से विधायक प्रकाश दास को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। वे ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि दोनों ही नेता अपनी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। संबलपुर सीट पर कोई भी पार्टी अपना गढ़ होने का दावा नहीं कर सकती। 2009, 2014 और 2019 के पिछले तीन लोकसभा चुनाव के दौरान संबलपुर की जनता ने तीन अलग पार्टियों कांग्रेस, बीजेडी और बीजेपी के पक्ष में वोट डाले थे। बीजेडी और बीजेपी के गठबंधन के दौरान 2009 से पहले बीजेडी के उम्मीदवार प्रसन्ना आचार्य इस सीट से 1998, 1999 और 2004 में तीन बार जीते थे। कांग्रेस ने अभी संबलपुर से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। 2019 में बीजद ने संबलपुर लोकसभा सीट क्षेत्राधिकार में आने वाली सात विधानसभा सीटों में से चार पर जीत हासिल की थी। संबलपुर सीट पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। कटक से तपन महाराणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए आज 112 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस बीच भाजपा सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। नई दिल्ली में पार्टी नेता मोहन प्रकाश और पवन खेड़ा की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुगम मतदान के लिए समय समय पर कई प्रयोग किए हैं। इनमें ईवीएम और वीवीपैट भी एक है। एक रिपोर्ट।
भारत में चुनाव के लिए लंबे समय तक बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है, तब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। लोग पर्चियों पर वोट देते थे और उन्हें सील बंद मत पेटियों में डाल देते थे। इसके बाद लंबी और थकाऊ मतगणना प्रक्रिया हाथ से संपन्न की जाती थी। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में कागज का इस्तेमाल होता था और अत्यधिक समय लगता था। इससे गलती होने की आशंका भी रहती थी। 1990 के दशक के आखिर में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ। इनसे मतदान प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कागज की पर्चियों का वोट देने के लिए इस्तेमाल बंद हो गया और मतगणना प्रक्रिया सुगम और आसान हो गई। दुर्गेश भदौरिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के नाम बदलने की लगातार कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगातार मनगढ़ंत नामों से अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक सच्चाई नहीं बदल सकती। ये हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। भारत की ये प्रतिक्रिया चीन की बार बार नाम बदलने की कार्रवाई के बाद आई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कहा था कि नाम बदलने से वास्तविकता नहीं बदल जाती। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य रहा है और हमेशा रहेगा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कोबरा बटालियन, जिला रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स का एक संयुक्त दल बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के गंगालुरू क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहा था। इस दौरान पेंड्रा के जंगलों में दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। एक रिपोर्ट।
बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि इस इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी। आज सुबह करीब 6 बजे लेंड्रा के जंगलों में सुरक्षा बलों की माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद अब तक 9 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा इलाके की तलाशी के दौरान एक लाइट मशीन गन और एक बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा फल मंडी के पास जांच चौकी पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को भागते हुए देखा गया, जिसके बाद संयुक्त दल ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक पिस्टल, मोबाइल फोन और अन्य चीजें बरामद की गयी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी आबकारी नीति घोटाला मामले में इसके 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 महीनों में उनके साथ सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बीच भाजपा में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क किए जाने के आरोप पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल ने अपने बयान में बताया है कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को कामकाज की रिपोर्ट दिया करते थे। नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ानों में देरी के लिए विस्तारा एयरलाइंस से रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने बताया कि एयरलाइंस को उड़ानों में देरी या उड़ान रद्द होने की स्थिति में यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए के नियमों का पालन करना होगा। नागर विमानन मंत्रालय विस्तारा के विमानों के रद्द होने की स्थिति की निगरानी कर रहा है। हालांकि उड़ान परिचालन का प्रबंध एयरलाइंस खुद ही करती है। परिचालनगत कारणों से कई उड़ानें रद्द किए जाने की खबर है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। राष्ट्रपति फेलिक्स सिसिकेदी ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। उन्होंने एक चुनावी वायदे को पूरा किया है और पिछले वर्ष के अंत में फिर से निर्वाचित होने के बाद नई सरकार के गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। अधिकारियों ने बढ़ते संघर्ष, मानवीय संकट और कांगो की खनिज संपदा के प्रबंधन सहित पूर्वी क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना किया है। सीरिया के दमिश्क में ईरान के दूतावास पर आज हुए इसराइल के हवाई हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 जनरल सहित 11 लोगों की मृत्यु हो गई। ईरानी नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये हमला अभूतपूर्व था और इन्होंने उसकी कड़ी निंदा की है। ईरान और सीरिया ने भी इस हमले की निंदा की है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया था। मुंबई इंडियंस ने जीत के लिए 126 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे राजस्थान रॉयल्स ने 15 ओवर और 3 गेंद में हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से रियान पराग ने 39 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए। भारतीय सेना की मेडिकल कोर ने दया और समर्पण की अनूठी भावना का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लद्दाख के करगिल में दूर दराज के चिक्टन क्षेत्र में बुजुर्ग और चलने फिरने में अक्षम रोगियों को जीवन रक्षक सेवा उपलब्ध कराई है। चुनौतीपूर्ण क्षेत्र और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बावजूद सेना के डॉक्टरों और सहायक कर्मियों के दल ने अत्यधिक आवश्यकता वाले लोगों तक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए जी जान से काम किया। इस दौरान करीब 216 मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। इसमें 80 पुरुष, 116 महिलाएं और 20 बच्चों को चिकित्सा लाभ मिला। जम्मू कश्मीर में मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कल वार्षिक अमरनाथ यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के बार बार नाम बदलने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। छत्तीसगढ़ के बस्तर भाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए। जुडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।